नमस्कार भारत, तारीख 22 अक्टूबर, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे गुजरात, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, पर क्या कुछ राजनीतिक एजेंडा भी है?
पटेलों और दलितों ने जिस तरह से रेबेलियन किया है बीजेपी सरकार के खिलाफ, उससे मोदी के डेवलपमेंट मॉडल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है।
झारखंड की राजधानी रांची में आज हो रही है आक्रोश महारैली। पाकिस्तान के टीवी और रेडियो पर नहीं सुनाई देगी भारतीय सामग्री, तो क्या अमीर खुसरो जैसे लोगों पर भारत में बने प्रोग्राम वहां नहीं चलेंगे?
कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो इस्लाम के बारे में है, गालिब के बारे में है, अगर वो लीगल तरीके से इंपोर्ट हो, उसके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा जाएंगे। मोदी वडोदरा में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उनकी इस यात्रा को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अमरीकी गृह मंत्रालय शुक्रवार को हुए एक साइबर हमले के कारणों की जांच कर रहा है, जिससे इंटरनेट की कई जानी मानी वेबसाइटें प्रभावित हुई थी। इंटरनेट उपभोक्ताओं को वेबसाइट की तरफ भेजने वाली अमरीकी कंपनी डाइन का कहना है कि उस पर पिछले 12 घंटों के भीतर 3 बार DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज हमले हुए हैं। कंपनी पर DDoS हमले के लिए हजारों इन्फेक्टेड कंप्यूटर और निजी राउटर्स का इस्तेमाल किया गया। इस हमले से जिन कंपनियों की सेवाओं पर असर पड़ा, उनमें पेपाल, अमेज़न, ट्विटर और स्पॉटिफाई शामिल हैं। यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हमले के पीछे किसका हाथ था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने माना है कि मंगल ग्रह पर बुधवार को उतरने वाला उनका खोजी अभियान तेज गति से मंगल ग्रह की सतह से टकरा गया है। मंगल के कक्ष में चक्कर लगा रहे नासा के मंगलयान से मिली तस्वीरों से पता चला है कि स्किया परेली यान मंगल की सतह से टकराने के बाद एक धमाके के साथ नष्ट हो गया। स्पेस एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि इस यान ने उतरने से तय समय के मिनटों पहले कुछ तथ्य एकत्र किए थे। संवाददाताओं से बात करते हुए फ्लाइट ऑपरेशंस मैनेजर मिशेल डिनी ने बताया,
Basically, Schiaparelli has reached the ground with a velocity which was much higher than it should.
Schiaparelli यान को सतह पर जिस गति से पहुंचना चाहिए था, वो उससे तेज गति से पहुंचा, कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से, और दुर्भाग्य से वो सतह से टकराकर वो नष्ट हो गया। ये थे फ्लाइट ऑपरेशंस मैनेजर मिशेल डिनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कनाडा ने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड डील यानी मुक्त व्यापार समझौता करने की उनकी कोशिशें विफल हो गई हैं। कनाडा के व्यापार मंत्री ने कहा कि यह साबित हो गया है कि यूरोपीय संघ यूरोपीय मूल्यों को मानने वाले कनाडा जैसे देश के साथ भी समझौते तक नहीं पहुंच सका। यूरोपीय संघ ने कहा है कि यह प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। प्रस्तावित समझौते पर कई सालों से बात हो रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने कॉमिक बुक की किरदार वंडर वुमेन को महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए मानद दूत घोषित किया है। इस फैसले का संयुक्त राष्ट्र के ही कई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। उनका मानना है कि कम कपड़े पहनने वाली गोरी सुपरहीरो वंडर वुमेन सांस्कृतिक, धार्मिक और भू राजनीतिक तौर पर लोगों की भावनाओं को आहत कर सकती है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में होंगे। पिछले करीब 2 महीनों के दौरान नरेंद्र मोदी की गुजरात की ये चौथी यात्रा है। प्रधानमंत्री वडोदरा में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद विकलांगों के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हालांकि उनके गुजरात दौरे को राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले पाटीदार आंदोलन और उसके बाद दलित आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियां उभरी हैं। आम आदमी पार्टी की सक्रियता को भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इन तमाम चुनौतियों के बीच क्या है मोदी के दौरे के मायने, सुनिए हमारे सहयोगी अंकुर जैन से।
पहला प्यार खास होता है, और क्या यही प्यार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात बार बार लेकर आता है? आज प्रधानमंत्री गुजरात आएंगे। आज वे वडोदरा में एक नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद विकलांगों के लिए एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। ये पिछले 2 महीनों में उनका 4था गुजरात दौरा होगा। ये दौरे गुजरात में आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद शुरू हुए। अब गुजरात में ये चर्चा जरूर शुरू है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दौरे अगले साल आने वाले गुजरात चुनाव की वजह से हैं। राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार राजीव शाह मानते हैं कि मोदी गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की कहानी को जिंदा रखने के लिए दौरे कर रहे हैं।
पिछले 2.5 साल में जिस तरह से गुजरात में शासन चला है उससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि गुजरात कोई बाकी स्टेट से गवर्नेंस में ज्यादा अलग नहीं है। एक मैसेज जो इस वक्त जो जा रहा है गुजरात से बाहर उसको वो रोकना चाहता है। चीज ये है कि पटेलों और दलितों ने जिस तरह से रेवेलियन किया है बीजेपी सरकार के खिलाफ उससे मोदी के डेवलपमेंट मॉडल को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। तो मेरे ख्याल से इस चीज बहुत ज्यादा कंसर्न है, इस वजह से बार बार हो गुजरात आ रहा है।
गुजरात बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात तो आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे से जाहिर हो गई थी। वहीं दलित और पटेल आंदोलनों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के दौरे ने बीजेपी को चिंता में जरूर डाल दिया है। गुजरात भाजपा के उपप्रमुख आईके जाडेजा कहते हैं कि गुजरात की जनता चाहती है कि मोदी राज्य में आते रहें और इससे अगर बीजेपी मजबूत होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए।
प्राइम मिनिस्टर हमारे नेता है, पूरे हिंदुस्तान को दुनिया में एक अलग प्रकार का सम्मान उन्होंने दिया है। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी अगर काम होता है, विकास का काम होता है, लोगों का काम होता है, इसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन का भी अगर मजबूती आती है तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, उसमें सभी को हर्ष होना चाहिए।
मोदी आज के दौरे में विकलांगों को कृत्रिम अंगों का भी वितरण करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री अपने दौरे में विकलांगों के कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। पर क्या गुजरात में विकलांगों की स्थिति में मोदी के इन दौरों से कुछ बदलाव आया है? अखिल पॉल पिछले कई वर्षों से गुजरात में विकलांगों के लिए काम कर रहे हैं। वे मानते हैं कि ऐसे दौरों के बदले प्रधानमंत्री को विकलांगों के लिए कुछ पुख्ता कदम उठाने चाहिए।
अगर प्रधानमंत्री जी पूरे देश के विकलांगों की मदद करना चाहते हैं तो जो एक राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी बिल पिछले 4-5 सालों से पार्लियामेंट में रुका हुआ है, अगर वो पास हो जाए तो सचमुच बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि वो अधिकारिता के आधार पे कानून बना है जिसमें किसी को चैरिटी नहीं, वो एक हक होगा उस विकलांग व्यक्ति का।
पर मोदी के इन दौरों से एक बात तय है कि वो जानते हैं कि गुजरात का आने वाला चुनाव बीजेपी और उनके लिए 2019 से पहले एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पर क्या मोदी गुजरात में कमजोर हुई बीजेपी को वापस मजबूत कर पाएंगे? अंकुर जैन, BBC।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में होंगे। रुख गुजरात से झारखंड का करते हैं। आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा को लेकर अंग्रेजी राज में बने 2 मजबूत कानूनों में बीजेपी सरकार द्वारा संशोधन की तैयारी का झारखंड में विरोध जारी है। झारखंड नामधारी दल और आदिवासी संगठन गुस्से में है। आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज राजधानी रांची में आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है। आदिवासी नेताओं का दावा है कि ये रैली असरदार होगी। क्या है आदिवासियों के सवाल और क्यों गुस्से में हैं लोग, सुनिए रांची से नीरज सिन्हा से।
कहेंगे हम लोग आदिवासी जितना भी जमीन है ना, सब सरकार उस पर जब मन जाती है तब तक वो अपना एक्ट संशोधन तो कभी बंद, बहुत तरह की बात इसमें अड़चन डालते रहती है। जो पहले जो था जिस तरह से वही रहना चाहिए।
आक्रोश महारैली यानी नाम के अनुरूप इस रैली के तेवर तल्ख हो सकते हैं। यही वजह है कि रात से ही लोगों का जत्था रांची पहुंचने लगा और सड़कों पर नारे गूंजने लगे। बीजेपी की सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है। दरअसल सरकार चाहती है कि आदिवासी कृषि योग्य जमीन का उपयोग गैर कृषि कार्य में कर सकें और आधारभूत संरचना के लिए उनकी जमीन ली जा सके। आदिवासियों को यह प्रस्ताव गले नहीं उतर रहा। रैली की तैयारी में जुटे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का दावा है,
1,00,000 से भी ज्यादा लोग इस रैली में भाग लेंगे। ये पहली बार इस प्रदेश के इतिहास में 32 तरह के जनजाति इस रैली में शामिल हो रहे हैं और शामिल होकर के जो CNT एक्ट SPT एक्ट संशोधन अध्यादेश का विरोध करेंगे।
इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है, लिहाजा सरकार यह बताने की कोशिश करती रही है कि इस संशोधन से आदिवासियों का कोई नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास,
कानून को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जमीन अभी भी अधिग्रहण हो रहा, लेकिन जमीन अधिग्रहण में अभी समय लगता है, साल के बाद मिलता।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत क्षेत्रीय दलों के कई नेता और संगठनों के प्रतिनिधि सीधे तौर पर आरोप लगाते रहे हैं कि उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। रैली से राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में यातायात तथा जनजीवन पर असर पड़ने के संकेत हैं। लिहाजा पुलिस सुरक्षा के इंतजाम में जुटी है। रांची में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता एमएस भाटिया बताते हैं,
क्राउड मैनेजमेंट बढ़िया से हो, इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना उत्पन्न हो और ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ रहे, क्योंकि रांची जो है राजधानी है, तो आम जनों को कोई तरह के बॉटलनेक्स ना फेस करना पड़े, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हैं।
बहरहाल इस रैली से सामाजिक ताना बाना और सियासत पर असर देखे जा सकते हैं। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
रांची में आक्रोश महारैली। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। पारिवारिक संकट से जूझ रही समाजवादी पार्टी में कल जिला अध्यक्ष और नगर सचिवों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी पहुंचना था, लेकिन वो लखनऊ में ही होने के बावजूद वहां नहीं पहुंचे। हालांकि बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि विधानसभा चुनावों में बहुमत मिलने पर अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अखिलेश की गैर मौजूदगी को लोग पार्टी में संघर्ष कम न होने के रूप में देख रहे हैं। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी में जिस तरह से आजकल दो ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में भी ये साफ नजर आ रहा है। अगले महीने की शुरुआत में पार्टी में जहां 5 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने की तैयारी हो रही है, वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 3 नवंबर से रथ यात्रा की तैयारी में जुटे हैं। शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव राज्य भर के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे थे, तो कुछ ही दूर पर मुख्यमंत्री विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। अखिलेश यादव को भी बैठक में बुलाया गया था, लेकिन पिछले कई दिनों से पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे अखिलेश शुक्रवार की इस अहम बैठक में भी नहीं पहुंचे। बावजूद इसके पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। पार्टी नेता मोहम्मद शाहिद कहते हैं,
समाजवादी पार्टी में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये नेता जी ने भी कहा है, शिवपाल जी ने भी कहा है, सबने कहा है, उसके बाद कोई चीज बची नहीं है इसका। समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक खेमा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी का, उसी के तहत सारे लोग हैं बस।
उधर विधायकों के साथ बैठक के अलावा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तमाम जिला अध्यक्षों के साथ अलग बैठक भी की। मोहम्मद शाहिद इसे भले ही नकार रहे हैं, लेकिन पार्टी दफ्तर न पहुंचना और नेताओं के साथ अलग बैठक करना शायद विवाद न सुलझने का ही संकेत दे रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक में कई नेताओं ने ही अखिलेश यादव को बतौर मुख्यमंत्री पेश करने की मांग रखी और उसी के बाद शिवपाल यादव को ये सफाई देनी पड़ी। वहीं जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी में अब ये लड़ाई सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव बनाम अखिलेश यादव हो गई है। ऐसे में शिवपाल यादव की ये सफाई भी बहुत मायने नहीं रखती। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं,
अलग अलग तरह के सवाल हैं। मुलायम सिंह यादव ने जो कहा था कि संसदीय बोर्ड तय करेगा, वो नाराज है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री के गतिविधियों से, और इन दोनों लोग के बीच नाराजगी अब जब जाहिर है। शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच की जो मत विभिन्न है इन दोनों के बीच में, उसमें कोई बहुत स्टैंड वाला बयान नहीं दे सकते।
एक दिन पहले ही इस बारे में पार्टी में कथित अलग अलग खेमों के दो विधायकों ने पत्र लिखकर भी इसे हवा दी। मैनपुरी से MLC उदयवीर सिंह यादव ने तो सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव से अवकाश लेकर संरक्षक की भूमिका में आने की अपील कर डाली। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आज भी एक बैठक बुलाई गई है। वहीं पार्टी नेता और कार्यकर्ता इस असमंजस में है कि वो 3 नवंबर को होने वाली रथ यात्रा की तैयारी में जुटें या फिर 5 नवंबर को होने वाले पार्टी के स्थापना दिवस समारोह की। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब आपको बताते हैं आज क्या है BBC इंडिया बोल का विषय।
BBC इंडिया बोल।
चीन के सामान पर भारत में घमासान। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि चीन पर नियंत्रण के लिए बंद हो चीनी सामान की खरीद। कांग्रेस, स्वदेशी जागरण मंच और दूसरे संगठन भी बॉयकॉट के पक्ष में। सोशल मीडिया पर भी चलाई जा रही है मुहिम। क्या भारत में चीनी सामान का बॉयकॉट मुमकिन है? अपनी राय जाहिर कीजिए बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 22 अक्टूबर शाम 7:30 बजे मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो शाम को इस कार्यक्रम में आपकी हिस्सेदारी की हमें प्रतीक्षा रहेगी। रुख पाकिस्तान का करते हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पेमरा ने कल टीवी और रेडियो पर प्रसारित होने वाली भारतीय सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया। पेमरा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फैसले का उल्लंघन करने पर केबल या रेडियो प्रसारकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर में उड़ी में भारतीय सेना के शिविर पर हुए हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए हैं। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है, तो पाकिस्तान ने भी बॉलीवुड फिल्मों और भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीबीसी उर्दू संवाददाता सकलैन इमाम ने बात की पेमरा के प्रमुख अफसार आलम से और पूछा कि भारतीय कंटेंट के प्रसारण पर रोक लगाना कितना जायज है।
हमने ये काम अप्रैल में शुरू किया था जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये कहा कि लोगों की ये बहुत शिकायत है कि इंडियन कंटेंट जो लीगल लिमिट है उससे ज़्यादा चल रहा है और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ वो चैनल आ गए लेकिन इंडिया में उस तरह रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। उसके बाद हमने इस पर काम शुरू किया। अगस्त के दूसरे हफ्ते में हमारी जो अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ गवर्नर है उन्होंने इस बात की अप्रूवल दी कि आप लोग जो इंडियन इलीगल चैनल्स हैं वो बंद करें और पेमरा की रेट इस्टेब्लिश करें जो भी इलीगल चैनल वो इंडियन या गैर दूसरे किसी मुल्कों। उसके बाद हमने 31 अगस्त को अनाउंस किया कि हम 15 अक्टूबर आखिरी तारीख है, उसके बाद से हम ये खिलाफ वर्जी कानून की उसको जारी नहीं रहने देंगे। ये है हिस्ट्री।
आपने जो फैसला किया है उसमें तो ये कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में जो उस वक्त सदर थे 2006 में उनका जो एक तरफा फैसला था भारत के मवाद को नशर करने का वो आपने कैंसिल किया है और साथ ही आपने इंडियन कंटेंट को पाकिस्तान में मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है।
परवेज मुशर्रफ का हवाला दिया गया था क्योंकि लोग पूछते थे ये पाबंदी किस कानून के तहत लगा रहे हैं, तो उसमें हमें बताना पड़ा फिर कि ये पेमरा का अपना कानून नहीं था। एक उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ की तरफ से एक ख़त आया था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को और फिर पेमरा को कि ये आप कर दें, तो वो कर दिया, इसलिए उसका रेफरेंस देना ज़रूरी था क्योंकि अब हम उसको रिवर्स करने जा रहे थे। दूसरी बात आपने पूछी है कि हमने बिल्कुल ज़ीरो क्यों किया। अब ज़ीरो इसलिए किया है कि पब्लिक प्रेशर बहुत है।
पब्लिक प्रेशर भारत में पाबंदी के बाद से बढ़ा है या उससे पहले का है?
इसका भारत में पाबंदी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। पब्लिक प्रेशर पहले भी बहुत था। अब जो मैंने बताया सितंबर के मिड में या आखिर में आके जो टेंशन हुई है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान उससे लोगों का फोकस इस तरफ आया तो लोगों को पता चला कि पैमरा 15 अक्टूबर से बंद करने जा रहा है जो कि हम 31 अगस्त को डेडलाइन दे चुके थे। इंडिया को एक ऐसी कंसेशन दी गई थी जिसको इंडिया ने पिछले 10 साल में रेसिप्रोकेट नहीं किया, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत सफर की है।
अच्छा, अब आपकी इंडस्ट्री सफर कर रही है, आपने कहा बहुत लोगों ने इससे भी कहा है, क्या इस पाबंदी के बाद आप देख रहे हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री ड्रामा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा?
जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने कुछ 7-8 वीक का टाइम दिया था इंडस्ट्री को ताकि वो पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री जो है वो इसको अपने आप को तैयार कर पाए इस वैक्यूम को फिल करने के लिए, वो उस पर काम शुरू हो चुका है।
गालिब पर ड्रामा या अमीर खुसरो पर प्रोग्राम या इकबाल की शायरी या कोई मजहबी डॉक्यूमेंट्री अगर वो इंडिया से आई तो पाकिस्तान में नहीं चल सकती?
अगर वो लीगल तरीके से इम्पोर्ट हो, जो फिल्में आ रही हैं पाकिस्तान में अभी भी इंडिया की, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो जिस तरह आपने कहा कि इस्लाम के बारे में है, गालिब के बारे में है, उसके लिए हमें इंडिया के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान।
इसका मतलब है कि ये पाबंदी इस वक्त आयद हुई है, ये मुस्तकिल नहीं है?
जाहिर है कोई चीज़ भी दुनिया में मुस्तकिल नहीं है और कानून तो आपको पता है इसलिए बनाए जाते हैं हालात के मुताबिक। अगर इंडिया देखें जो बड़ी जमहूरियत है उसे चाहिए कि वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इस तरह कॉर्नर ना करे और छोटी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वैसे भी कंपीट करना मुश्किल है उसके लिए, तो उसको चाहिए कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के जो ड्रामास हैं उनको इंडिया उन पर पाबंदियां ख़त्म करे, तो उससे जाहिर है पाकिस्तान अखलाकी तौर पर इस पाबंद होगा कि पाकिस्तान भी उस पर मुस्बत रद्दमल दे।
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पेमरा के अध्यक्ष अफसार आलम से बात कर रहे थे बीबीसी उर्दू संवाददाता सकलैन इमाम। उधर भारत के सीमा सुरक्षा बल ने कल दावा किया कि सीमा पर उसकी फायरिंग में 8 पाकिस्तानी रेंजरों और एक चरमपंथी की मौत हुई है, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ के इस दावे का खंडन किया है। वात्सल्य राय ने श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
कल सुबह से ही जम्मू क्षेत्र के इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसको भारत सरकार कहती है, कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा फायरिंग का दावा किया था बीएसएफ ने, और उसमें एक बीएसएफ का जवान जो है वो बुरी तरह घायल हुआ था। और कल शाम को बीएसएफ ने दावा किया कि जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें पाकिस्तानी रेंजर्स को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। और मेरी बात भी हुई इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ राकेश कुमार के साथ, और उन्होंने कहा कि 8 जवान पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे गए हैं जवाबी कार्रवाई में। और जाहिर है ये 18 सितंबर को उड़ी हमला और फिर 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद भारतीय फोर्सेज की तरफ से सबसे बड़ा दावा है।
लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से इस दावे को खारिज किया गया है, गलत बताया गया है।
जी जाहिर है सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी खंडन पाकिस्तानी फोर्सेज ने किया है, लेकिन भारतीय फोर्सेज का अपना एक मैकेनिज्म है। मेरी बात भी हुई राकेश कुमार से, जो आईजी हैं, मैंने उनको यही सवाल किया। मैंने कहा कि आखिर आपको पता कैसे चला कि पाकिस्तानी रेंजर्स के 8 जवान मारे गए हैं? और उन्होंने बताया कि जवाबी कार्रवाई के तुरंत बाद जो इंटरसेप्ट होते हैं, जाहिर है जो सीमा के आर पार कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, चाहे वायरलेस हो या टेलीकम्युनिकेशन के दूसरे डिवाइसेस हो, उनको इंटरसेप्ट किया जाता है आर पार। तो आईजी राकेश कुमार का कहना था कि पाकिस्तानी रेंजर्स के आपस में जो बातचीत हुई वायरलेस पे, उसको इस पार इंटरसेप्ट किया गया, और जिसे पता चला कि उनके 8 जवान मारे गए और उसके साथ ही एक चरमपंथी भी मारा गया है।
रियाज मसरूर से बात कर रहे थे, बात चले रहा है कार्यक्रम में। अब अखबारों की चर्चा कर लेते हैं, और ये खबर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जनसत्ता मेरे सामने है, ये इस खबर पर बड़ी बड़ी सुर्खियां लगी हुई हैं। बीएसएफ ने मार गिराए साथ पाकिस्तान रेंजर, मार गिराए जैसे शब्दों का इस्तेमाल, हम लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जी। अखबार क्या कह रहे हैं
मोलाल जी? भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा है कि जब तक लोढ़ा पैनल के सिफारिशों को नहीं माना जाता, तब तक वो राज्य क्रिकेट बोर्ड को किसी तरह का फंड रिलीज नहीं कर सकते। यही खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर दिख रही है। दी स्टेट्समैन लिखता है टाइटनिंग द रूल्स, यानी नियम कड़े हुए। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा विंड्स ऑफ चेंज, यानी बदलाव की हवा, इसे कहा है। जनसत्ता ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कतरे बीसीसीआई के पर। अब आपको मैं जनसत्ता में छपी एक खबर बता दूं। खबर में कहा गया है कि छात्रों पर दबाव कम करने के उद्देश्य से खत्म की गई सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा को फिर से शुरू किए जाने की संभावना है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा है कि इस नीति पर समीक्षा की जा रही है और इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा फिर शुरू हो जाए।
मैं सोच रहा हूं कि बच्चे क्या सोचते होंगे कि इस बार एग्जाम देना है, जो 10th में आते हैं कि इस बार एग्जाम देना
ही पड़ेगा।
जी, दैनिक जागरण अखबार में छपी एक खबर के अनुसार कुतुब मीनार की आधी ऊंचाई पार कर चुकी है राजधानी दिल्ली के कूड़े के पहाड़, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और इसे खतरनाक स्थिति बताया है। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए इसके निस्तारण की योजना के बारे में पूछा है। उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि कूड़ा निस्तारण का काम स्थानीय निकायों पर ना मढ़े, विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उन्हें लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने से एक खबर आपको बता दूं। शिमला के एक अस्पताल में 5 महीने पहले 2 नवजात शिशु गलती से अलग अलग माता पिता को दे दिए गए थे। अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दोनों परिवारों को मिलकर मामला सुलझा लेना चाहिए, और अब अगले सप्ताह ये दोनों बच्चे, एक बच्चा और बच्ची, अपने असली माता पिता से मिलेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया मानसी दास।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड, यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज, और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। इस बार बॉक्स ऑफिस पर 1984 में हुई घटनाओं पर आधारित फिल्म 31 अक्टूबर रिलीज हुई है, जिसमें मुख्य भूमिका में है सोहा अली खान और वीर दास। कैसी है ये फिल्म, समीक्षा सुनिए अर्नब बनर्जी से, जिनसे बात की विदित मेहरा ने।
यार मेरी फैमिली को बचा लेता प्लीज,
आपकी फैमिली को बचाने के चक्कर में मैं अपनी फैमिली को जोखिम में नहीं डाल सकता।
थापर साहब,
इस हफ्ते हुई है फिल्म 31 अक्टूबर रिलीज, जिसे डायरेक्ट किया है शिवाजी लोटन पाटिल ने और प्रोड्यूसर हैं हैरी सचदेवा। फिल्म बेस्ड है भारत में 1984 में हुए दंगों के ऊपर। और कैसी बनी है ये फिल्म, बता रहे हैं फिल्म क्रिटिक अर्णव बैनर्जी।
31 अक्टूबर एक, जैसा कि नाम से सजेस्ट करता है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के ऊपर है। मुझे लगता है हिस्टोरिकल घटना या पॉलिटिकल घटना पे फिल्म बनाना बहुत ही आसान भी है, उतना ही मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि हमारे पास सारे तथ्य मौजूद हैं। 31 अक्टूबर 84 इतनी पुरानी घटना नहीं है, हमारे पास एक से एक उसके फैक्ट्स मौजूद हैं और हम में से कुछ लोगों ने उसे देखा भी हुआ है। लेकिन मुश्किल उतना ही है, क्योंकि जब तक आप बारीकियों में नहीं जाएंगे कि वो घटना क्यों घटी, उसका कारण क्या था, उसके रिपरकशंस क्या हुए, तब तक फिल्म बनाना बेकार है। मतलब आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं कि 31 अक्टूबर को ऐसी घटना घटी, तो उसको तो कोई भी देखने नहीं जाएगा। तो ये फिल्म जो कि कथानक था बहुत ही वीक था मेरे हिसाब से। और साथ में वीरदास एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनको एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है। सोहा अली भी बहुत एक बेहतरीन अदाकाराओं में से नहीं रही है। साथ में जो हैरी सचदेव है, जिनका की शायद कुछ एक पर्सनल इस 31 अक्टूबर से लेना देना है, यानी उनके घर में शायद ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने ये कहानी लिखी, वो खुद भी इसमें एक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ एक इमोशनल कॉर्ड को लेकर आप फिल्में बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे दिल को छूने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ऑडियंस बैठ के कहे, हाँ ये बात हमें नहीं पता थी, चलो ये एक्स्ट्रा हमें पता चली। इतने सालों बाद भी आपके पास इतना वक्त था कि आप एक अच्छी फिल्म बना सकें कि उस घटना के आगे और पीछे क्या क्या हुआ उसको लेकर अगर आप उसमें एक स्क्रिप्ट बनाते, तो मुझे लगता है कि एक बहुत एक क्रॉनिकल के हिसाब से फिल्म बनती। मैं 31 अक्टूबर को 5 में से 1 दूंगा।
इस फिल्म की समीक्षा के बाद अब कार्यक्रम में सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। अहमदाबाद में जारी कबड्डी विश्व कप में कल सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए, जहां पहले सेमीफाइनल में ईरान ने दक्षिण कोरिया को 28-22 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फाइनल में ईरान का सामना भारत से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में उम्मीदों के अनुरूप थाईलैंड को 73-20 से करारी मात दी। वैसे सेमीफाइनल से पहले ही भारत के कप्तान अनूप कुमार को उम्मीद थी कि भारत थाईलैंड से आसानी से पार पा लेगा।
वैसे ये नहीं कह सकते, टीम अच्छा नहीं, टीम काफी अच्छा यहाँ तक पहुँचे तो अच्छा ही टीम है, बाकी मुझे लगता है कि हमारी टीम आराम से हराएगी थाईलैंड को।
लेकिन डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु महिला एकल वर्ग में जापान की सायाका सातो से 21-13, 21-23, 21-18 से हार कर बाहर हुई। तो उसके बाद पुरुष एकल वर्ग में भारत के अजय जयराम चीन के युकी से 23-21, 21-15 से और HS प्रणय शीर्ष वरीयता हासिल मलेशिया के ली चोंग वेई से 21-10, 22-20 से हार कर दूसरे ही दौर में बाहर हो गए। इसके साथ ही डेनमार्क ओपन में भारत की चुनौती भी पूरी तरह समाप्त हो गई। उधर चिटगांव में बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट खोकर 221 रन था। इस टाइम के समय साकिब अल हसन 31 और शफीउल इस्लाम बिना कोई रन बनाए नाबाद थे, जबकि सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने 78 और कप्तान मुशफिकुर रहीम ने 48 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 293 रनों पर समाप्त हुई। बांग्लादेश के लिए पहला टेस्ट मैच खेल रहे मेहदी हसन मिर्जा ने 80 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। वहीं पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच कल से अबू धाबी में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 304 रन बना लिए थे। कल स्टंप के समय कप्तान मिसबाउल हक 90 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि उनके अनुभवी बल्लेबाज यूनिस खान ने अपने टेस्ट करियर का 33वां शतक जमाते हुए 127 रन बनाए। असद शफीक ने भी 68 रन बनाए।
खेल समाचारों के बाद इससे पहले कि आपसे हम विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। अफ्रीकी देश कैमरून के याउंडे और डुआला शहर के बीच चल रही एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई है। हादसा दोनों शहरों के बीच एसेका में हुआ। सरकारी मीडिया के अनुसार हादसे में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई है। अमरीकी गृह मंत्रालय शुक्रवार को हुए एक साइबर हमले के कारणों की जांच कर रहा है, जिससे इंटरनेट की कई जानी मानी वेबसाइटें प्रभावित हुई थीं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने माना है कि मंगल ग्रह पर बुधवार को उतरने वाला उनका खोजी अभियान तेज गति से मंगल ग्रह की सतह से टकरा गया है। कनाडा ने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड डील यानी मुक्त व्यापार समझौता करने की उनकी कोशिशें विफल हो गई हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। घंटे भर बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को फिलहाल विदा दें, नमस्कार।